नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्रों के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के बुशहर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमरीका इसराइल के हमलों के बदले में किए गए हैं। हालांकि इसराइली अधिकारियों ने इन परमाणु केंद्रों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इसराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार हमले में बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमाह के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य को नहीं खोलता है तो वो ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा विनाशकारी हमला करेंगे और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी चेतावनी में कहा कि अमरीका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा, जिसकी शुरूआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से होगी। उधर इसराइली रक्षा बलों ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी इसराइली संयुक्त ऑपरेशन रोरिंग लायन से शुरू होने के बाद पहली बार लगभग 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। इसराइल ने कहा कि ईरान वैश्विक खतरा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मिसाइलें अब लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र के 12 देशों पर हमले किए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से कल टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की है। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। सरकार ने राज्यों के व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे कुल आवंटन 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी के विस्तार के लिए सुधारों के आधार पर 10% आवंटन भी शामिल है। इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विनिर्माताओं और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में बड़े बदलाव किए हैं। पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। संशोधित योजना में चौथे वर्ष बाद किस्तों में 5% अग्रिम अंशदान वापसी की जा सकती है। संतोषजनक ऋण प्रदर्शन पर चौथे वर्ष से हर वर्ष इसका 1% वापस किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं। असम में सुश्री कृष्णा साहा दलगांव से और जीवन गगोई सिसिबर गांव से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने केरलम के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। केरलम की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। पुदुचेरी में भाजपा ने आवंटित 10 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पुदुचेरी चुनाव के लिए अब तक कुल 135 नामांकन दाखिल किए गए हैं। बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1912 में आज ही के दिन बिहार बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। इस उपलक्ष्य में पटना के गांधी मैदान में 3 दिन तक चलने वाला राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पानी की हर बूंद के संरक्षण और उसके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया है। इंडियन ओपन स्क्वाश टूर कॉपर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबलों में आज मुंबई में पुरुष सिंगल्स में भारत के वीर चोटरानी का सामना हमवतन अभय सिंह से होगा। महिला वर्ग में अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की हाना मोहताज से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम तथा कुछ आसपास के भागों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम और माहे में भी कल तक गर्म और उमस भरे मौसम के बीच में आंशिक बादल छा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बीते 2 दिनों से निचले इलाकों में बारिश जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।